शक्ति कंबाइंड स्वरूप की अवस्था का भी हमने अभ्यास किया, और जो लास्ट है कर्मातीत अवस्था, जो हमने है ना बाबा के जीवन में देखा कि हर कर्म करते हुए भी बाबा ने शिव बाबा की याद में ही वो किया, तो वो कर्मों का जो श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ कर्म तो बनते ही गए, लेकिन बाबा कर्मातीत बने, माना कर्मों के जो बंधन होते हैं उसको बाबा ने तोड़ते हुए जैसे कि संपूर्ण पद को प्राप्त किया, तो वो कर्मातीत अवस्था क्या है और उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसका भी अभ्यास हमने विशेष आठवें चरण में किया उसका। तो ये जो अलग अलग अवस्थाएं थी, तो जितने भी अलग अलग लोकल चैप्टर्स के भाई बहने इसमें सम्मिलित है, लगभग 500 से भी ज्यादा भाई बहने सम्मिलित है डायरेक्ट रूप से, और इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल चैप्टर्स पे इसका अभ्यास अलग से भी होता था। तो किसी जो भाई बहने वहां एक या दो ही है किसी लोकल चैप्टर में जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे, तो उन्होंने ही अपने अपने लोकल चैप्टर में भी इस प्रोजेक्ट को चलाया है, और अलग अलग चार्ट्स के रूप में भी हमने हर अवस्था के चार्ट्स बनाए थे, और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच माना हर चीज को प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो वो अवस्थाएं प्रैक्टिकल चार्ट के रूप में भी दी थी, और बहुत अच्छी रीति से सभी ने उसका अभ्यास भी किया। और वैसे उसी सिलसिले में जो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप है उसका भी जलगांव लोकल चैप्टर की ओर से बहुत सुंदर ये पूरा उसका अवस्था का जो चार्ट था या जो अवस्था है उसका क्या अभ्यास है, तो डेढ़ मास का जो पूरा ये अवस्था का अभ्यास चला, तो उसकी पुस्तक रूप में भी आप उसको देख सकेंगे। तो इसका विधिवत उद्घाटन दीदी जी करेंगे ही, और उसके बाद ये किताब आपको फिर स्टॉल पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सुंदर एक किताब बनी है जिसमें जो हमने अभ्यास किए, तो उसका सुचारू रूप से कैसे अभ्यास करना है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसमें क्या चार्ट को हमको फॉलो करना है। तो ये शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप ये तो हमारा सिर्फ डेढ़ मास का नहीं लेकिन पूरे है ना हमारे जीवन का ये हमारा अंग बन जाए, और बाबा और हम सदा ही कंबाइंड रहे, तो इस रूप से अगर हम इसका विशेष अभ्यास करते हैं तो ये भी हमारी एक दिनचर्या का कहो या हमारे ब्राह्मण जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, और हमारी जो परिस्थितियां है वो हम इजीली उसको पार कर सकेंगे।
ज्ञान सरोवर में रहते हैं और 27 सालों से आप ज्ञान में चल रहे हैं, आप बड़े ही सिंसियर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भाई हैं, और हमारी ये खुशनसीबी है कि ये स्पार्क विंग के एक बहुत ही अहम हैंड है, स्पार्क विंग में ही अपनी सेवाएं देते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड सोल हैं, आपने अपनी सेवाओं को लंबे समय तक विदेशों में भी दिया है, करीब 7 वर्षों तक लंदन में रह करके आपने वहां के कई सेंटर्स पे अपनी सेवाएं दी हैं, आप अभी अभी कुछ समय पहले यूएसए में भी जाकर के करीब 1 वर्ष रह करके आए हैं, तो हम बुलाना चाहेंगे अभी अभिराम भाई जी को आए और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दें।
ओम शांति। लास्ट ईयर में ऐसे ही कुछ संकल्प आया था बाप दादा के मुरली से, जो बाप दादा ने बोला था सभी का एक संकल्प हो योग में संगठित रूप में करें, तो उस संकल्प से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें एक्चुअली मैं एक दूसरे किसी को देना चाहता था, फिर हमारे कंधे पे ही रख दिया था। तो हर सप्ताह संडे कम से कम 1 घंटा जहां भी है सभी का एक संकल्प में योग हो, और उसी संकल्प से सकाश देने का या वाइब्रेशंस फैलाने का एम रखा था। एटलीस्ट 45 मिनट्स में अपना उन्नति भी हो और सेवा भी हो। तो अपने उन्नति में विभिन्न प्रकार के सोल कॉन्शियस स्टेज का करने का कोशिश किया था, और सेवा में भी जो बाबा ने अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं उसको लेके कुछ बहुत ही कम कमेंट्री और म्यूजिक, जैसे 45 मिनट्स में 5-6 मिनट्स कमेंट्री था और पूरा म्यूजिक दिया हुआ था, शायद लोगों ने एंजॉय किया होगा, शायद इसमें भी बैठे हों। टोटल व्हाट्सएप ग्रुप में भी था और गूगल ग्रुप भी था, उसमें कम से कम 500 लोग जुड़े हुए थे, और कई जगह अपने सेंटर्स पे गीता पाठशालाओं में उन्होंने पूरा क्लास को इन्वॉल्व किया हुआ था, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ लोगों का फीडबैक भी आया हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा है करके। और ये प्रोजेक्ट में बैक टू बेसिक्स इसलिए किया था, विभिन्न प्रकार से हम लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बाबा ने जिस प्रकार से बोला है बेसिक, और इसमें हर सप्ताह धारणा भी भेजी गई थी जो एकदम बेसिक, जैसे कॉमन सेंस बोलते हैं, उस प्रकार के बेसिक धारणाएं हमारे में ये होनी चाहिए, जो दादियों के अनुभव में या बड़े टीचर्स के अनुभव में बाबा की बातें हम सुनते हैं, तो उसमें ये ज्यादातर अनुभव में आता है। जैसे कुछ सवेरे मौन हो, धीरे से बोलना, जैसे चलने का चंपल की आवाज ना हो, भीड़ नहीं बनाए, क्योंकि अभी रिसेंटली मुरलियों में, साकार मुरलियों में भी रॉयल्टी के बारे में बाबा बोल रहे हैं, और अव्यक्त मुरली में जैसे देवताई संस्कार बाबा कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया था। और आगे भी इसको और नया बनाने के बजाय जो हमने लिया है उसको ही रिवाइज कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं आगे के लिए उसको ही रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इसका कमेंट्रीज और ऑडियो किसी को चाहिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हमारे पास जो भी सुविधा होगी उस अनुसार उनको दे देंगे। और कुछ अनुभव भी, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी आया हुआ था, शायद मैं शेयर करने के लिए बोलूंगा अगर कोई है उपस्थित है बाद में एक्सपीरियंस सेशन में। तो इस प्रोजेक्ट का यही विशेषता थी, जो हम मूल जड़ों में जाएं, हमारी कम से कम अभी तो धारणाएं, बेसिक धारणाएं आ जाएं, इसका ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया था। और इसमें मेरे को भी बहुत सारा सीखने को मिला, और कोऑर्डिनेशन का जो कुछ भी जितना भी हो सका किया। मैं भी बीच में 4-5 सप्ताह कुछ मिस हुआ होगा, आगे पीछे हुआ है, बाकी 50 सप्ताह हमने किया है, और करीब 40-45 ऑडियो कमेंट्रीज भी उसमें तैयार करके दिए हैं। तो इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य सबको अपनी मूल जड़ों में ले जाने का था। शायद मैं समझता हूँ सबको अपना वो अनुभव हुआ होगा, और वो धारणाएं भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो हमारी मूल जड़ों में जाने का। तो बाबा कहते हैं हम ही आधार मूर्त हैं, कम से कम मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्पार्कलर्स को, हमको देख के दूसरों को प्रेरणा आए, दूसरे भी देखे दूर से ही, हाँ ये स्पार्क वाले हैं, हमारी चलना भी ऐसे हो, या टोली लेने का हो, या उस समय जिस प्रकार से हम देवताई संस्कार को जो धारणा में लिया है, कम से कम इधर भी बड़ों को दिखाई पड़े।
आदरणीय दादी जी पधार चुकी हैं, एक बार पुनः करतल ध्वनि से दादी जी का स्वागत करें। और जैसा कि आप सबको बताया कि इस पार्क अपनी 25वीं वर्षगांठ यानी सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, तो इसके उपलक्ष में आप सबको एक रिस्ट बैंड बांधा गया है। बांधा है सबको, एक बार दादी को दिखाएं, सब सबके हाथ में रिस्ट बैंड एक बांधा गया है, उस पर एक गुण भी लिखा गया है, उस गुण को अपने जीवन में धारण करना है। खास अंबरनाथ से हमारी तनुजा बहन जी बहुत पुरुषार्थ करके आप सबके लिए रिस्ट बैंड बना करके लाई है, और ये कंगन आप सबको बांध दिया गया है कि इस पार्क अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, और इस वर्ष में हम सबको सेवाओं की धूम मचानी है, साथ साथ अपनी स्व उन्नति की भी धूम मचानी है, दोनों एक साथ करना है। तो ये जो रिस्ट बैंड है हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसको आप सब संभाल के रखेंगे, और जब भी इस पर दृष्टि जाए आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करें। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे रूपेश भाई जी को। आपने भी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लिया था टर्न इन रिटर्न, और एक वर्ष तक बहुत अच्छी तरह से संचालित किया, इसके गाइड हमारे आदरणीय सूर्य भाई जी रहे, और ये एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा है। वैसे तो रूपेश भाई को आप सब जानते हैं, उनके बारे में तो हम क्या इंट्रोड्यूस करें, उन्हें कौन नहीं जानता है, वो हाथ खड़ा है, रूपेश भाई को कौन नहीं जानता, वो हाथ खड़ा करे, सभी जानते हैं। तो हम रूपेश भाई को बुलाना चाहेंगे। रूपेश भाई
92 से ज्ञान में हैं और 94 से यानी बहुत ही कम समय में ही बाबा के घर में आप आ गए थे और ज्ञान सरोवर में अपनी समर्पित जीवन जी रहे हैं। आप एक बहुत ही कुशल टीवी एंकर हैं, आप सब जानते ही हैं, बहुत सुंदर भट्टियां कराते हैं, इनकी वाणी में बहुत मधुरता है, इनकी जो कमेंट्रीज है हम सब बाबा के साथ जब मिलन मनाते हैं तो उनकी कमेंट्रीज को सुनते हैं, तो इस तरह की शख्सियत हमारे बीच है। हम आमंत्रित करते हैं रुपेश भाई जी को आए और संक्षेप में अपने जो भी प्रोजेक्ट लिया था उसका सार संक्षेप हमें सुनाए। रुपेश भाई जी।
ओम शांति। परमादरणीय दादी जी और सम्मानित मंच, साथ ही मेरे प्यारे स्पार्कलर्स भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट हर वर्ष लिया जाता है। दो प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना। पिछले साल जो हमने प्रोजेक्ट लिया था वो था अव्यक्त पालना का रिटर्न, जिसे हमने नाम दिया था टर्न इन रिटर्न। आदरणीय सूर्य भाई जी इसे गाइड कर रहे थे और विनय पंड्या भाई और मुझे सौभाग्य मिला कि हम इसे कोऑर्डिनेट करें। बहुत ही प्यारा सा विषय था। लक्ष्य ये था कि 50 वर्ष पूरे हो गए बाबा को हमें अव्यक्त रूप से पालना देते हुए, तो हम बाबा की पालना का रिटर्न कैसे करें। 50 साल तक पालना और उस पालना के फल स्वरूप हम कुछ ना करें तो ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए 50 वर्ष पूर्ण होने पर खास करके लक्ष्य लिया गया था और रिटर्न शब्द को ही हम लोगों ने की वर्ड के रूप में रखा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। आर रिमेम्बरेंस, हम याद में रहें। ई एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एम्बॉडीमेंट। टी से खुद को हम पूरी तरह टर्न करें। यू अर्थात अनशेकेबल स्टेज, और साथ ही आर रूहानियत और रॉयल्टी, और लास्टली एन निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी अवस्था। पूरे वर्ष इस कीवर्ड को हम लोगों ने साथ रखा और ये चेक करते रहे कि हम रिटर्न लगातार बाबा को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में पूरी तरह से जैसे रिटर्न देने का हमारा एक स्वरूप था और बहुत ही सफलतापूर्वक सभी हमारे मेंबर्स ने इसे किया। पूरी 50 वर्षों में प्यारे बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन सभी शिक्षाओं को सार रूप में हम लोगों ने 24 बातों में निकाला था, 24 points, क्योंकि 12 मास का ये प्रोजेक्ट था। फरवरी से शुरुआत हुई थी और जनवरी तक ये प्रोजेक्ट था 12 मास का। तो हम लोगों ने पूरे 12 मास में इन 24 पॉइंट्स को लिए थे और हर मास में 15-15 दिन के लिए दो दो विषय लिए गए थे। जैसे हम लोगों ने फरवरी से शुरुआत की तो 1 से 15 फरवरी तक स्वराज्य अधिकारी स्थिति लिया गया था और फिर 16 से 28 फरवरी तक शांति की शक्ति को लिया गया। उसके पश्चात मार्च मास में हम लोगों ने 15 दिन के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि और उसके पश्चात निश्चिंत स्थिति को लिया। इसी प्रकार पूरे ही वर्ष 15-15 दिन एक एक विषय पर बहुत गहराई से फोकस किया गया ताकि उन बातों की गहराई को हम समझें, उस पे एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें और उसके एम्बॉडीमेंट बने। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से इन 24 विषयों को पूरे ही वर्ष पुरुषार्थ में लाया गया जो 50 वर्षों में बाबा ने सार रूप में, जिस्ट रूप में हमें दिया है। जो साधन थे हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के, दो खास साधन हम लोगों ने अपनाए, एक तो ईमेल और दूसरा व्हाट्सएप। आप जानते हैं व्हाट्सएप आजकल कॉमन है सभी के साथ, तो ईमेल तो हम मंथ में एक बार भेजा करते थे लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा रोज ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। और व्हाट्सएप में रोजाना जो विषय आपने पीछे देखे, जो जिस समय टॉपिक लिया जाता था उसी से रिलेटेड स्वमान दिया जाता था, उसी से रिलेटेड अव्यक्त बाप दादा के सुंदर महावाक्य दिए जाते थे, उसी पे सीनियर्स की क्लासेस होती थी और साथ ही क्विज भी बाबा की अव्यक्त मुरलियों पर उसी विषय पर दिया जाता था, ताकि उस विषय को बहुत गहराई से समझा जा सके। उसकी स्टडी की जाती थी, बाबा के पॉइंट्स को देखा जाता था और साथ ही साथ गहराई से मुरली की स्टडी करके क्विज बनाया जाता था, ताकि सभी अच्छे से मुरली को पढ़ें। और क्विज कंपटीशन पूरे वर्ष रखा गया और ये कहा गया था कि जो विन करेगा उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा, तो उन्हें प्राइज भी जरूर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये विनर्स हैं, हमारे सात ग्रुप थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, उन सात में ये सात विनर्स हैं। श्रेया बहन है, सोनल बहन है, जया बहन है, बंसीधर जी हैं भुवनेश्वर से, अशोक भाई हैं, भरत भाई हैं, मनोहर भाई यदि हो तो एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं यहाँ, यदि वो हैं तो अवेलेबल। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक बार जरूर तालियां आप सभी बजाएं, क्योंकि ये पूरे वर्ष इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे विनर्स हैं, इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स भी रहे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, और उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। ईमेल के द्वारा हर मास पत्र भेजा जाता था सूर्य भाई जी के द्वारा हम मास के पहले ही दिन ये पत्र भेजते थे, ताकि उस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट कर सकें और सबको मोटिवेट किया जा सके कि आप क्या करने जा रहे हैं इस मास में। और जो चार्ट बनाया जाता था, चार्ट के 5 पॉइंट लिए जाते थे, हर पॉइंट के 20 नंबर होते थे, अर्थात हर दिन 100 नंबर में से हमें इन 5 पॉइंट्स के आधार पर अपने आप को मार्क देना होता था। 15-15 दिन के 2 चार्ट होते थे, मास में हम उसका पूरा रिजल्ट निकालते थे। और ये सारी जो चार्ट हमारे भाई बहनों ने भरे वो हमें ईमेल के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा भी प्रेषित किया करते थे, और लगभग सभी ने ये बहुत अच्छी तरह से किया। हमारे लोकल चैप्टर, अहमदाबाद लोकल चैप्टर, थाईलैंड के हमारे भाई बहने, दुर्ग, जामनगर, नासिक, जलगांव, भुवनेश्वर, पलवल, नडियाद, ये लगातार हमारी नियमित भागीदारी रही इन लोगों की चार्ट भरने में, प्री पोस्ट जो हमारे क्वेश्चनर थे उनको फिलअप करने में। साथ ही कुछ इंडिविजुअल्स के भी नाम आप यहां सामने देख रहे होंगे, इन्होंने भी लगातार चार्ट भर करके हमें भेजा है। मैं चाहूंगा कि जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हमारे भाई बहने थे, चाहे वो लोकल चैप्टर से हैं, इंडिविजुअल हैं, वो जरा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि दादी जी और हमारे सभी वरिष्ठ उन्हें देख सकें। एक बार अपने स्थान पर, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आप जरूर बजाएं, जिन्होंने बहुत ही गहराई से इस पे पार्टिसिपेट करके अपने आप को भी आगे बढ़ाया और सबको प्रेरित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपने स्थान पर बैठें। कुल प्रतिभागियों की संख्या जो है इस प्रोजेक्ट में लगभग 1000 के करीब थी, जो कि लगातार हमसे जुड़े हुए थे। इनके साथ साथ तो और भी कई जुड़े होते ही हैं। भारतवर्ष में जो थे व्यक्तिगत रूप से कुछ जुड़े हुए थे और कुछ लोकल चैप्टर और सेंटर के साथ जुड़े हुए थे। विदेश में विशेषकर हमारा थाईलैंड का ग्रुप था जो लगातार एक्टिव रहा और लगातार उन्होंने अपने चार्ट्स हम सब तक भेजे, और कुछ अन्य विदेशी भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक क्वेश्चनर बनाया गया था। आप जानते हैं कि हम कैसे अब तुलनात्मक अध्ययन करें कि भाई किस प्रकार से हमें इस प्रोजेक्ट से लाभ हुआ या नहीं हुआ, हमने कुछ किया या नहीं किया, तो इसके लिए क्वेश्चनर बनाया गया था जो प्रोजेक्ट से पहले भरवाया गया सभी भाई बहनों से। इसमें 50 प्रश्न लिए गए थे, और ये 50 ही जो प्रश्न हैं ये हमारी स्थिति से जुड़े हुए थे, हमारे व्यवहार से जुड़े हुए थे, हमारे संकल्प से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से जुड़े हुए थे, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं इन सिचुएशंस पर, जिसके आधार पे भी एक ग्राफ बनाया जा सकता है। और उसके बाद यही जो क्वेश्चनर है उसको पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट भी भरवाया गया, तो हमें जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही सुंदर रहे। प्रश्नावली में से कुछ जो बातें थी एसेंस रूप में वो ये कि परमात्म याद वो सहज होती गई, हमारी दिनचर्या बहुत ईजी होती गई, शक्तिशाली स्थिति बनी, और साथ ही हम अचल अडोल रह पाए। और एक बड़ी जो समस्या है व्यर्थ संकल्पों की, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल सबने महसूस किया। ग्राफ आप देख सकते हैं, हमारे लोकल चैप्टर्स ने जो भी परफॉर्मेंस दी थी वो ग्राफ, जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये प्री जो उन क्वेश्चनर भरवाया गया था वो स्थिति है, और पोस्ट में जो रेड आप लाइन देख रहे हैं वो है, अर्थात पहले हमारी स्थिति नीचे थी लेकिन अभ्यास करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद जो ग्राफ है आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। साथ ही कुछ इंडिविजुअल्स के भी हम लोगों ने इसको ग्राफ देने का प्रयास किया है। आप नीली जो लाइन देख रहे हैं वो प्री स्थिति है, जो नीचे की स्थिति है और साथ ही जो रेड ग्राफ आप देख रहे हैं वो हमारी ऊपर की स्थिति है अर्थात पोस्ट की स्थिति। प्रोजेक्ट से पहले नीली लाइनें हैं, प्रोजेक्ट के बाद रेड लाइनें हैं, जिससे भी पता चलता है कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे या लोकल चैप्टर में जिन्होंने भाग लिया है उन सब ने अपनी स्थिति, अपने व्यवहार, इन सब में बहुत सुंदर परिवर्तन का अनुभव किया। अनुभव को हमने सभी के मंगाए भी थे, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, बहुत सारे और सुंदर से सुंदर एक्सपीरियंस हैं। अब एक एक सुनाना सचमुच संभव नहीं है। किसी ने अपनी अपने युगल की बीमारियों पर सुंदर अभ्यास किए, साक्षीपन की स्थिति बहुत सुंदर रही, इच्छा मात्रम अविद्या किसी ने कहा, जब ये अभ्यास किया गया तो और भी सुंदर सुंदर हमें प्राप्तियां होती चली गई, जब हमने इच्छाओं को छोड़ा तो प्राप्तियां और भी सहज होती चली गई, ऐसे भी सुंदर अनुभव आए। और भी प्यारे से अनुभव हमारे अन्य भाई बहनों ने भेजा है। यदि मैं सार रूप में कहूं तो सबके एक्सपीरियंस में यही रहा कि पुरुषार्थ बहुत सहज हुआ, व्यर्थ से हमें मुक्ति प्राप्त हुई, रूहानी दृष्टि वृत्ति अच्छी हुई, हमारा हल्कापन बढ़ता चला गया, स्थूल और सूक्ष्म जो प्राप्तियां हैं वो भी हमारी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ होती चली गईं। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे जो कार्य किए गए उनमें से कुछ उपहार लेकर के भी ये प्रोजेक्ट आपके लिए आया है। जैसे मैंने आपको कहा कि 24 अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने लिए थे जो बाबा ने हमें कहे हैं अलग अलग समय पर, उन सभी के बाबा के महावाक्यों का सुंदर संकलन किया गया है और उसे एक पुस्तिका का रूप भी दिया गया है। हर विषय के बारे में आपको इन पुस्तिकाओं में जानकारी मिल जाएगी। पिछली बार हमने सबको एक साथ कंबाइंड कर दिया था तो वो बहुत मोटा महाभारत की तरह हो गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने उसे देख के आप भयभीत ना हो कि इतना अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए इन सभी विषयों को अलग अलग पुस्तिकाओं का रूप दिया गया है। स्पार्क ऑफिस में अवेलेबल है, पुरुषार्थ के चार्ट भी अवेलेबल हैं, क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आपको यदि इनमें से किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप स्पार्क ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और इन पुस्तिकाओं को बनाने में विशेष करके हमारे जामनगर लोकल चैप्टर ने और डॉक्टर वीना ने बहुत बहुत मेहनत की। मैं चाहूंगा एक बार जरूर वो खड़े हो जाएं ताकि हमारी जामनगर के भाई बहने और लोकल चैप्टर वाले डॉक्टर वीना बहन भी हैं यहाँ अवेलेबल हैं, उनके लिए एक बार जरूर तालियां बजाएं ताकि उन लोगों को भी प्रोत्साहन इससे मिले। और हमारे नासिक लोकल चैप्टर ने भी इस प्रकार की पुस्तिकाएं बनाई हैं, ये भी अवेलेबल रहेंगे, आप इसे भी स्पार्क ऑफिस से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेष करके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हम फॉलो फादर को लेने वाले हैं कि कैसे, ये देख रहे हैं आप छोटू पापा को फॉलो कर रहा है, तो हम सबको भी, हम सब छोटुओं को भी मतलब बच्चों को बाबा को ऐसे ही फॉलो करके, फॉलो फादर करते हुए बाप समान बनना है। हमारी दादियों की, बड़ों की, सबकी यही प्रेरणा है। तो पिछला वर्ष टर्न एंड रिटर्न, अव्यक्त पालना का रिटर्न सभी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है और बहुत अच्छा अभ्यास और पुरुषार्थ किया है। आप सब उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और सारी चीजें कलेक्शन में हैं। जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया है और इन पुस्तिकाओं का लाभ लेना चाहते हैं वो भी इसका सुंदर लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स रुपेश भाई जी। अभी हम बुलाने जा रहे हैं छाया बहन जी को। इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट लिया था, एक साल तक ये भी चला था और आप इसके गाइड जो थे अंबिका दीदी जी थी और ये भी एक बहुत ही अपने आप में एक सफल प्रोजेक्ट रहा था जिसको बहुत ही सफलतापूर्वक छाया बहन जी ने कोऑर्डिनेट किया था। छाया बहन जी आप बेंगलोर से हैं, वहां के अरिकेरा सेंट्रल की आप संचालिका हैं। पिछले करीब 30 वर्षों से आप बाबा के ज्ञान में हैं और 20 वर्षों से समर्पित हैं। आप इस स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर भी हैं। तो अभी हम अनुरोध कर रहे हैं छाया बहन जी से कि आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल हमें दें। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दादी और आदरणीय मंच, तो हम बहुत खुशी से ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग पावर ऑफ धारणा, क्योंकि बाबा जो कहते हैं धारणा जो है एक जीवन है, जीवन ही धारणा मूर्त हो, तो इसके लिए प्रोजेक्ट गाइड और कोऑर्डिनेटर जो थे हमारे गाइड करने वाले अंबिका बहन जी थे। तो आप सब ने देखा जो भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे, तो आप देखे होंगे दीदी जी के बहुत ही प्रेरणादायक क्लासेस भी हमने भेजे और कुछ इंस्पिरेशंस भी भेजे थे, कुछ गाइडलाइंस भी भेजे थे। और
हमारे बीच मृत्युंजय भाई जी पधार चुके हैं, हम सब करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। हम बहनों से अनुरोध करेंगे कि भाई जी का भी पुष्प गुच्छों से स्वागत करें एवं तिलक लगा करके मृत्युंजय भाई जी का स्वागत करें।
तो इस प्रोजेक्ट में जो मेन प्रोजेक्ट के डिटेल्स जो भेजे गए, तो इसका माध्यम था व्हाट्सएप और गूगल ग्रुप। तो मेंबर्स जो थे 750 मेंबर्स थे। आप सबको नहीं दिख रहा होगा, फॉन्ट गलती से कुछ लाइट हो गया है। दिख रहा है आप सबको? नहीं दिख रहा है? ओके। तो व्हाट्सएप ग्रुप में 750 लोग जुड़े थे और गूगल ग्रुप में 250 लोग जुड़े थे और टोटल 1000 के करीब इस प्रोजेक्ट में जुड़े और बहुत सफलतापूर्वक एक साल तक ये प्रोजेक्ट चला। और ये हम बहुत गर्व से कह सकते कि हर मास जो हम चार्ट भेज रहे थे, तो चार्ट भरा हुआ चार्ट हमको रेगुलर अपने भाई बहन भेजते थे और चार्ट का रिजल्ट भी हर मास हम देखते कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। तो इस धारणा के जो टॉपिक्स थे, भरा मास के लिए टॉपिक्स अलग अलग एक मास के लिए हम लिए थे। पहला ज्ञान था, ज्ञान के इसमें पॉइंट्स भेजे गए। फिर उस प्रकार चार्ट भी हम भेजे गए, मास के पहले दिन या दूसरा दिन हम चार्ट भेजते थे और ज्ञान के कुछ पॉइंट्स डीप भेजते थे। फिर दूसरा मास था योग और फिर दिनचर्या, फिर स्वरूप बनना, फिर निश्चय और फिर प्रयोग। तो प्रयोग अलग अलग रीति से हम किस पर कर सकते वो भी हम भेजे थे इन डिटेल। पवित्रता, कर्म, वाणी और सर्वधारणा मूर्त। तो अभी हम देखेंगे कि लास्ट में हम जो है पुरुषार्थ की विधि को अलग अलग थोड़ा क्रिएटिव भी बनाए थे। तो पुरुषार्थ की विधि थी मंथली चार्ट, तो मास में चार्ट भेजते थे। अमृत वेला अभ्यास के लिए अलग अलग कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स भेजते थे और कमेंट्रीज और उसके साथ विजुअलाइजेशन भी भेजते थे। और डेली साकार मूल्य के जो मुख्य धारणा युक्त पॉइंट्स थे भाबा के वो भेजते थे, अव्यक्त मुरली पॉइंट्स भेजते थे, मनन चिंतन के लिए कुछ विधि भेजते थे। और हर गुरुवार के जो बहुत विशेष धारणा के ऊपर जो बाबा की मुरली होगी या कुछ भी बहुत ही इंस्पायरिंग होगा तो वो स्पेशल अव्यक्त मुरली भेजते थे। और योग अभ्यास, नुमा शाम अभ्यास के लिए हम बहुत ही सुंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ विधि भी भेजे थे। तो पैटर्न जो था चार्ट का, जो पैटर्न था कैसे हम मुरली क्लास को हम एंजॉय कर सकते। हालांकि रोज रोज मुरली सुनना, रोज रोज वही पॉइंट सुनना, तो उसके अलावा रोज रोज वही के अलावा कुछ नया नए रीति से, कुछ नए एंगल से उसको सुनना और उसको क्रिएटिव रीति से हम धारण कैसे कर सकते, ऐसे अलग अलग विधियां वेस हम भेजे थे। मनन चिंतन के ऊपर कुछ टॉपिक्स भेजे थे और अलग अलग ट्रैफिक कंट्रोल में अलग अलग अभ्यास भेजे थे। और हर दिन का जो अभ्यास है उसके लिए कुछ चेकिंग पॉइंट्स भी भेजे थे। और खास करके हम नमश्रम योग के लिए कुछ क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव हम कमेंट्रीज और विधि भी भेजे। और ऐसे अलग अलग कैसे हम धारणा मूर्त बने और बाबा को लेटर लिख करके गुड नाइट बोल करके हम अपने दिन को विराम दे, तो ये भी हम कुछ विधियां भेजे थे। तो ये जो गाइडेंस और बहुत ही अच्छा जो टॉपिक चला पावर एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ धारणा, ये बहुत अच्छा गाइडेंस और इंस्पिरेशन हमारे आदरणीय अंबिका बहन जी का था। तो उनके जो क्लासेस चलते वरदानी भवन में तो वो डायरेक्ट हम ऐसे भेज देते और इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाते बहुत। तो एंजॉयिंग पुरुषार्थ थ्रू इजी विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो हम बाद में जबकि हमें बहुत दिक्कत होती सारा मुरली याद रखना, तो हम कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाते, फोटोज बनाते, उसके नीचे हम मेन पॉइंट्स लिखते। तो जैसे बाबा कहते कि आप पिक्चर फोटो को याद करें तो आपको मुरली के पॉइंट्स याद आ जाएंगे, तो ऐसे टेक्निक भी अपनाया गया। और फिर तो कैसे बाबा के मुरली के स्वरूप बन जाए, तो इसके लिए भी बहुत क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक भेजे गए। और फिर योग का प्रयोग खास करके अपने हेल्थ के ऊपर या कोई भी विघ्न या परिस्थिति के ऊपर, उसके लिए भी हम प्रयोग कुछ भेजे थे। और खास करके दीदी जी, अंबिका दीदी जी के दृढ़ संकल्प, और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर स्वर्णिम सोच जो है दादी जी के हेल्थ के बारे में, उसके लिए भी खास हम सब भाई बहनों को दीदी जी के जो कमेंट्री है दादी के हेल्थ के प्रति, वो भी भेजे थे। और उस प्रति भी बहुत भाई बहनों ने बहुत प्रयास किए और प्रयोग भी किए हैं। और मनसा सेवा के लिए भी हम कुछ पॉइंट्स भेजे थे, जैसे कि आप प्रैक्टिस देखते हैं ऐसे कुछ पिक्चर्स भेजे थे हम, आप जो इसमें देख रहे हैं प्रोजेक्टर में। तो इसमें से खास हम कुछ ऐसे क्रिएटिव अभ्यास कर सकते हैं, जैसे पिंजरे में पंछी है तो हम अपने स्वभाव संस्कार अपनी सोच से हम बंधे रहते हैं, तो अपने बंधन में जितना बंधे रहते हैं उतना हम एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, नया कुछ सोच भी नहीं सकते। तो एक एक मिनट के लिए ऐसे हम पिक्चर देख करके, फोटो देख करके अभ्यास भी भेजते, ताकि चेक भी करे और फिर ये अभ्यास लगातार सारा दिन करते रहे। तो इसके अलावा हमने देखा कि इस प्रोजेक्ट में जैसे चार्ट भी चला और फिर कुछ पॉइंट्स भी चले, और लास्ट में जो हमने पिक्चर फोटो के साथ पॉइंट्स भेजे थे वो थोड़े ग्लिम्स आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम समझते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल और मेल के द्वारा तो 1000 से ज्यादा भाई बहन जुड़े थे। अगर इस सभा में कोई बैठे हैं भाई बहन तो खड़े हो जाए, ताकि दादी जी का आशीर्वाद भी हम ले सकते हैं और दादी जी और आदरणीय सभी महारथी भाई बहनों से दृष्टि भी ले सकते हैं। खड़े हो जाए प्लीज। भुवनेश्वर का जो टीम है रेगुलर थे चार्ट भेजने में, भुवनेश्वर का टीम है दुर्गेश बहन जी का, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट में। और फिर तो बहुत सारे भाई बहने आए नहीं है लेकिन इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे, तो आपको ग्लिम्स दिखा रहे। एक मिनट भाई जी। तो आज के अभ्यास के लिए बाबा जो कहते हैं चेकलिस्ट बनाए, तो आज के अभ्यास, आज हम स्नेह संबंध और सेवा में चेक, तो आत्मिक वृत्ति कैसे बनाएंगे, दृष्टि कैसे पवित्र रखे, उसके लिए फोटो पिक्चर भेजे थे। और फिर मुख्य बाप, तो ये ऐसे कुछ पिक्चर्स थे, ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ, तो सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है। तो ये फोटो जब देखते हैं बाबा की दृष्टि और बाबा की जो शक्ति हम देखते हैं, तो तुरंत वो पॉइंट याद आता है और हम सोचते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करें। तो ये बहुत ही क्रिएटिव और सहज तरीका हम लोगों ने अपनाया, तो ऐसे आपको और ग्लिम्स भी दिखाएंगे। तो इस चित्र में मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या है, तो बाबा उस दिन पूरे दुर्गा के ऊपर बताए थे मुरली में, तो हम इस फोटो के द्वारा सबको सहज पुरुषार्थ का ये तरीका अपनाएं। तो हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट से जो भी जुड़े थे बहुत एंजॉय किए ये प्रोजेक्ट से जुड़ करके। तो अगला जो प्रोजेक्ट है परिवर्तन शक्ति से निरंतर प्रगति या उन्नति, तो इस प्रोजेक्ट में अंबिका दीदी जी कोऑर्डिनेटर रहेंगे, मेन कोऑर्डिनेटर, फिर उनके गाइडेंस से ये प्रोजेक्ट चलेगा और उसके लिए भी खास हम चार्ट और ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक भी हम इस विधि को भी अपना रहे। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन और इस प्रोजेक्ट से जुड़े और प्रेरणा लेकर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद छाया बहन जी। तो इस तरह से स्पार्क विंग की ओर से ये चार प्रोजेक्ट्स पूरे वर्ष के लिए लिए गए थे। इन चारों ही प्रोजेक्ट्स का ये एक ब्रीफ था। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि एक बार इन चारों प्रोजेक्ट्स के जो कोऑर्डिनेटर्स और गाइड्स हैं उन सबके लिए आप सब इनकी मेहनत के लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं इनकी मेहनत के लिए। इतनी मेहनत करके तैयार करके पका हुआ भोजन हम सबके लिए देते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और खुश प्रसन्न रहें, तो ये सचमुच काबिले तारीफ है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद अभी हम इस 25th एनुअल मीट एंड एक्सपीरियंशियल रिट्रीट का विधिवत दीप जला करके उद्घाटन करेंगे आदरणीय दादी जी के संग और मृत्युंजय भाई जी अंबिका दीदी जी के संग। हम सब मिल करके दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हम अनुरोध करेंगे दादी जी से, मृत्युंजय भाई जी से, अंबिका बहन जी से एवं अन्य मंचासीन अपने भाई बहनों से कि वो सब आगे आए और दीप प्रज्वलन कर इसका उद्घाटन करें। आप सब जहां हैं वहीं रह करके मन से आप दीप प्रज्वलित करेंगे और इस उद्घाटन में सहयोग देंगे। इसके बाद साथ साथ हम कुछ भाई बहनों का नाम अनाउंस कर रहे हैं, वो भी मंच पर आ जाएं और इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। प्रदीप मल्होत्रा जी कृपया मंच पर आ जाएं। मेजर जनरल एमपी सिंह जी आपसे भी अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग दें। मुकुल भाई जी, विपिन नायक भाई जी, कुमुद बहन जी गुलाबपुरा से, सिस्टर बारबरा प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड हेल्प इन कैंडल लाइटिंग, ब्रदर रोड्रिगो फ्रॉम ब्राजील, ब्रदर तपन फ्रॉम दुबई, ब्रदर सिस्टर वेरोनिका फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया and sister Sonia from Malaysia. I request all these brothers and sisters to come on stage and please give your help in candle lighting. आप सब तालियां बजाते रहें। आप सब भी एक बार खड़े हो जाएं, खड़े होकर के इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें और तालियों में कंजूसी ना करें। हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से,
बैठ जाएं, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। हमने कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। हमें दृष्टि के माध्यम से दादी जी की ब्लेसिंग भी मिली। अब हम बाबा की ब्लेसिंग सुनेंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम सब देखेंगे। दादी की दृष्टि और ब्लेसिंग तो हमें मिल गई। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बाबा ने इस पार्क के बारे में क्या कहा है। पहली बार 96 में इस पार्क का एक छोटा सा ग्रुप बाप दादा से स्टेज पर मिला था और बाप दादा ने अपनी आशाएं और उम्मीद को उनके सामने रखा था। उसके बाद 2000 में पुनः बाबा इस पार्क वालों से मिले और अपनी आशाओं के बारे में बाबा ने हम सबको कहा और प्रेरित किया कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करना है। तो बाबा की निश्चित रूप से हमसे बहुत उम्मीद है। तो एक छोटा सा हम ये वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ बाप दादा टू स्पार्कलर्स। ये जो क्लिप है पहला 96 वाला, इसमें ऑडियो नहीं है, इसके बाद वाले में ऑडियो है। ओम शांति। तो बाप दादा ने हम सबसे उम्मीदें रखी हैं। थोड़ा सा ऑडियो का इसमें प्रॉब्लम था, इसमें नहीं, हम बाद में देख रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो हम दिखाएंगे। हमारे बीच आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और दिल यही कहता है कि दादी जी और थोड़ा हमारे साथ समय बिताती बैठती तो हमें और अच्छा लगता, लेकिन दादी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दादी को जाना है थोड़ा जल्दी, इसलिए अभी हम दादी जी से अनुरोध करेंगे कि दादी जी जाने से पहले अपना आशीर्वचन हम सबको दे करके जाएं। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी तो बहुत समय से सुन रहे हो, भाव अर्थ ये सब बताने का मूलाधार तो यही है, जो हम सुनते हैं उसको हम अच्छी तरह से मनन करके अपने जीवन के कर्मों में लाएं, क्योंकि बाबा ने जो हमें इस जीवन को इतना मूल्यवान बनाया है, जो भी शिक्षाएं हमें मिलती जाए उन शिक्षाओं को फिर हम अंदर में स्वयं से मनन करते रहें, और जितना हम मनन करेंगे उतनी सहज हमारी भी धारणा बनती जाएंगी। ये सब संगठन हम किस लिए करते हैं कि एक दो का अनुभव सुनकर जो जो बाबा ने हमें विधियां बताई है उससे हमने कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, किस प्रकार से हमें उन बातों को समझ में आया है और जीवन के कर्मों में लाया है, जिससे हमारे जीवन के अंदर वह परिवर्तन जो कुछ भी हम देखें साक्षी हो करके देखें, कहां भी कोई अभी असुविधा या ऐसी सामने बात आती है तो उसको हम साक्षी हो करके देखें, उसमें हम घबराएं नहीं, अपने मन को जस्ती उन विचारों में न रखें। हमें एक बात को ही याद रखना है कि शुरू में ही बाबा ने हमें ये शिक्षा दी कि हम अपने को जो ओरिजिनल शक्ति हमारी है, हमारी ओरिजिनल शक्ति क्या है, उसका नाम मैं सदा शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तो शुद्ध ही है ना, परंतु मैं आत्मा जब शरीर में आती हूँ, कर्म इंद्रियों के वश होती हूँ, तो फिर कर्म ऐसे हो जाते हैं एक दो के संग में आकर के जो कुछ न कुछ हमारे कर्मों का खाता बनता जाता है। और बाबा ने हम बच्चों को वो शिक्षा दी है जिससे हम अपने विकर्मों का खाता न बनाएं, परंतु जो शिक्षा हमें मिली है उस शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करते जाएं, और वो धारण करते हुए जिनों का हम गायन पूजन करते हैं, जिनों को हम याद करते हैं, हम स्वयं को ऐसा स्वरूप अनुभवी बनाते जाएं। इसी कारण बाबा की शिक्षा के अंदर जो हमें समझ मिलती गई, उस समझ से हम जो भी बात सुनते अपने से लगाएं, अपने से विचार करें, सचमुच जो बाबा ने ये बात कही है सचमुच मेरे जीवन के कर्मों में आई है। मैंने अपन को ऐसा परिवर्तन किया है जो बाबा चाहते हैं, या जो हम भी समझते हैं कि जब हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान है और हम स्वयं को आत्मा समझ करके, ये तो जानते हैं हम कि आत्मा शरीर में है, परंतु मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि मंच पर भेजा है, तो मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या है। कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे, तो हमें हम जितनी बाप की महिमा गाते हैं, जितना बाप के गुणगान करें उतना कम है, परंतु हमें ये देखना है बाप के गुणगान करते हुए उन गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करती जाऊं, और वो शक्ति स्वयं के अंदर जागृत रहे, जो समझो कोई भी हमें अच्छी रीत न समझ करके कुछ बोल देता है या कोई ऐसी बात सामने आती है तो हमारे अंदर उनके प्रति कभी भी घृणा की वृत्ति जागृत न हो। हम समझते हैं हर एक अपने पुरुषार्थ के अंदर चलता रहता है पुरुषार्थ में भी, कभी ऊंचाई कभी नीचाई आ जाती है। लेकिन अब हम जब को अब हम जब बाप मिला है और बाप से हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे समझते हैं कि जीवन बड़ी ऊंची होती है। अब ऊंची जीवन अर्थात जो सदा संतुष्ट रहे, जो अपने जीवन के अंदर जो गुण गाए गए हैं, जो हम देवताओं की महिमा गाते हैं, वो देवताओं जैसे गुण हम स्वयं के अंदर धारण करते रहें, सदा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। कोई बात समझो हमें अच्छी न भी लगती है, वास्तव में ये कहना भी मेरा राइट नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर एक अपने अपने अनुसार बोलता है करता है। तो हमें ये नॉलेज है हर एक की, अब सब इतने हम सब बैठे हैं, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते है ना, फिर भी हम स्वयं को जो बाप की शिक्षा में मिली है उस शिक्षा को धारण कर हम अपने जीवन के अंदर सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहें। सभी सवेरे से बैठे हैं, काफी कुछ सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, और वैसे भी स्वयं भी नॉलेज को जानते हो, हमें देखना है हमारे अंदर दिन प्रतिदिन, जब हमने इस नॉलेज को समझा है, अच्छी रीत जानते हैं और हमने जीवन में धारण किया है, तो हमारे जीवन के अंदर जो हमें शिक्षा मिली है बरोबर यथारत रीति से हम उन बातों को जीवन के जीवन में अमल में ला रहे हैं। ये अगर हम बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहेंगे तो उससे समझो हम काम करते भी है, हमारे अंदर ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है, फिर भी कभी कभी कोई ऐसा मौका आता है तो कभी हम भी कुछ न कुछ ऐसे बोल देते हैं, और कभी हम स्मृति में होते हैं और कभी विस्मृति तो नहीं कहेंगी, परंतु स्मृति के भी तो स्टेजेस है ना। तो हमें सदा स्वयं पर ध्यान अटेंशन जरूर रखना है, क्योंकि बाबा ने जो हमें इतनी ऊंची नॉलेज दी है, और बाबा हम बच्चों में क्या उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे बच्चे, कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे, तो बाप हमको इन्हीं उम्मीदों से वो शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी बाप समान बन जाए। इसलिए हमें सदा याद रहे, समय तो चलता जाएगा और चलते चलते आखिर तो समय पूरा होगा, इसलिए हम अपन को ऐसा तैयार करें जो हम सुनकर के खुश होते हैं, सत्युग में कैसी जीवन होती है, बाबा ने हमें क्या क्या सिखाया है, उन शिक्षाओं को हम सदा अपने जीवन में याद करते हुए स्वयं के अंदर वो धारणा पर अटेंशन रखें। जितना हमारे जीवन में पहली बार तो सदा हमें स्मृति बनी रहे कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, भले हम जानते हैं मानते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो कर्म में आने से कभी कभी अपनी पसंदी अलग हो जाती, ऐसी होती है जिसकी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, उस समय में भी हमें अपनी अवस्था को संभालना है। हम सदा एक ये नियम रखें, उठते समय चाहे सोते समय चाहे काम करते समय, बीच बीच में हम बाबा को बड़े प्रेम से याद करते रहें, और बीच बीच में हम स्वयं को चेक करते रहें कि जो बाबा ने शिक्षाएं दी है जितना हमने उसको समझा है, सचमुच मैंने अपने जीवन के अंदर वो धारणा बनाई है। जितनी हमारी धारणा बनती जाएंगी उतना ही हम सहज बाप समान अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि समय तो आगे चलता जाता है। अभी तो जानते हो कलयुग का समय है, कलयुग माना ही क्या, तो दुनिया तो ऐसी है अभी, और इसके बाद कलयुग के बाद सत्युग आना है। सत्युग कैसे आएगा उसका ये सारा दृश्य चल रहा है, और बाबा से हमें वो नॉलेज मिलती है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये हम अपने को पक्का पक्का याद रखें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का कर्तव्य, शुद्ध आत्मा के बोल, शुद्ध आत्मा के विचार कैसे होंगे, अंदाज तो सब लगा सकते हैं, भले वो खुद कितना भी समझ के करते हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि कितनी वो ऊंची अवस्था है, जो हम कुछ भी देखें, ना पसंदी भी हो समझो, लेकिन जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो हम उस नापसंदी को क्यों अपनाऊं, जो हम अंदर से दुखी होते रहूं। स्वयं स्वयं को हमें समझाना है, स्वयं की स्थिति ऐसी बनानी है जिसमें हम अंदर से हमें बाप की याद बनी रहे और बाप ने जो हमें शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं का बार बार हमारे अंदर शुभ चिंतन चलता रहे, जिससे हमारे अंदर खुशी बनी रहेगी। और खुशी के साथ साथ अगर कोई भी मेरे में ऐसी एक्टिविटी है या कभी हम नाराज हो जाते हैं, उस बात को हम फौरन समझ जाएंगे अपने को और अपन को परिवर्तन कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ ये लक्ष्य हमें पक्का होना चाहिए कि हमें स्वयं को जो बाप ने हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुकूल हमें अपनी जीवन को बनाना है। हमारे अंदर चिंतन की शक्ति सदा शुद्ध रहे। रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, उस मुरली के अंदर बाबा रोज भिन्न भिन्न कुछ न कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उन बातों का हम मनन करते रहें। जितना हमारे अंदर बाप के महावाक्यों का मनन रहेगा और उसी पर हमारा चिंतन रहेगा, जिससे भी हम बात करें, भले मिले जुले थोड़ा बहुत समाचार तो ठीक है, लेकिन अंदर स्वयं से हम ये बातें करते रहें, बाबा ने मुझे जो शिक्षा दी आज का सारा दिन मैंने उन शिक्षाओं संपन्न अपनी जीवन में निभाया है, या कहां भी कोई हमारे से भूल हुई है उस भूल को स्वयं ही स्वीकार करके समझ के और स्वयं स्वयं से प्रॉमिस करे हम फिर से कभी भी ऐसी भूल स्वयं से नहीं करेंगे। ये स्वयं को समझाना तो वो स्वयं का समझाना स्वयं पर असर करता है और स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमें बाबा ने नॉलेज किस लिए दी है कि हम जो वास्तव में हमारा स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप हम आज की दुनिया में भी अपना बना के रखें। स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि मेरा चैन ये शक्ल या रूप बदल जाएगा, परंतु नैनो में वो रूहानियत और मन के अंदर वो बाबा की शिक्षाएं सदा हमारी स्मृति में रहे। एक दो से हम मिलते रहें तो स्नेह से मिलते रहें। देखो अभी हम बैठे हैं आपस में, कितना प्यार से सुनते रहते हैं, कितना हमारी दिल होती है नहीं ये और भी सुने और भी सुने और भी सुने, लेकिन जितना हम सुनते हैं उसको हम रोज अपने को याद दिलाएं कि हमारी जीवन में जो सुना है बरोबर वो धारणा हमारे अंदर हुई है, और उन्हीं धारणाओं को हम अगर धारण करते चलेंगे, स्वयं स्वयं से बातें करें, क्योंकि मनुष्य जीवन सर्व योनियों में श्रेष्ठ योनि है। ऐसी श्रेष्ठ योनि के अंदर हम भी सर्व योनियों से श्रेष्ठ रहें बने ऐसा ही हमको स्वयं को सोचना है और स्वयं को श्रेष्ठ बनाना ही है, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान जो हमको ये नॉलेज दे चुके हैं, जो नॉलेज अभी हम सुन रहे हैं, उसको हम अंदर से अपने से ऐसे मनन करें जैसे सचमुच बाप अभी मुझे सन्मुख में समझा रहे हैं। तो कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे, और जब हम मानते हैं हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। वास्तव में ये कोई हमारी सिर्फ मान्यता नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि आत्मा वो तो है ही परमात्मा की, जहाँ परमात्मा का निवास वहाँ हम आत्माओं का निवास। जब आत्मा शरीर में नहीं है, शरीर के सिवाय है, अपनी उन्हीं ओरिजिनल रूप में है, तब तो कहाँ है, वहाँ ही शांति धाम में उसका निवास है। लेकिन जब अभी मैं सृष्टि मंच पर आकर के शरीर को धारण करके कर्म कर रही हूँ, तो हमारे कर्म हमारे विचार ऐसे ही होने चाहिए। जबकि अभी हमें स्मृति मिली हुई है, स्मृति है, तो हमें जीवन ऐसी बनानी है जो शिक्षाएं बाबा ने हमें दी हैं, उन शिक्षाओं को बार बार हम स्मृति में लाकर अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें और स्वयं को ऐसा शिक्षा स्वरूप अर्थात बाप समान। बाप समान कहने का मतलब बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूर्ण रूप से धारण करते और हम उस खुशी से चलते रहें, जो भी मिले उनसे हम खुशी से बात करते हुए उनको भी वो विधि बताएं, जिससे, क्योंकि दुनिया में रहते नीचाई ऊंचाई तो आती रहती है, लेकिन जब हम समझते हैं आज की दुनिया ही ऐसी है, अच्छा नीचाई ऊंचाई हुई, लेकिन जानने वाली समझने वाली करने वाली तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा ने अभी हम बच्चों को ऐसी नाले दी है जिससे हम सदा स्वयं को शुद्ध रूप में अनुभव करते रहें, अर्थात हमारे विचारों के अंदर शिक्षाएं सदा याद रहे और उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें, तो हमारी ऐसी सहज विधि से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सदा हमारे अंदर बाप की स्मृति बनती जाएंगी और हम दूसरों को भी उसी आत्मा भाव से देखेंगे, उनसे प्रेम प्यार से बातचीत करेंगे, अर्थात हमारे गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, हम बाप के शिक्षाओं के अनुकूल स्वयं को गुणवान बना करके अपनी जीवन श्रेष्ठ बनाएं और ऐसे ही सर्व को भी ऐसी ही शिक्षा देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ आप भी इन बातों को सुनते हुए, सुनने का फायदा यही है, जो बात अच्छी लगे और उसमें जिस बात को हम सहज रीति से धारण कर सकते हैं, पहले उसका अभ्यास शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो परिवर्तन, चाहे बोल में, चाहे दृष्टि में, चाहे वृत्ति में, आता ही जाएगा। हम सर्व को ऐसा देखें, सब एक पिता परमात्मा के संतान, हम सब आपस में भाई और बहन है। देखो जब ऐसे संगठन में मिलते हैं तो उस समय हमें यही लगता है हम जैसे कि सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है। लेकिन ये हम स्मृति अपन को बार बार दिलाते रहे तो मैं जैसा बाप वैसे बच्चे, इसलिए जैसे हम बाप को याद करके खुश होते हैं, बाप से उनके शिक्षाओं को सुन करके हम खुश होते हैं, इसी प्रकार से हम सदा उन शिक्षाओं से स्वयं को ऐसा बना करके और सबके साथ अपना ऐसा ही स्नेह संपन्न व्यवहार रखते चलें। अगर ये हम अपनी पर अटेंशन देते हैं और ऐसा करते जाते हैं तो हम भी आगे बढ़ते जाएंगे और जिनों से संपर्क होता जाएगा उन्हों को भी इससे प्रेरणा मिलती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी बहुत सुनते रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और आगे के कार्यक्रम चलते रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, जोर से ताली बजाएं। जी करता है हम दादी जी को सुनते ही रहे। हम दादी जी को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहेंगे कि दादी जी ने जो भी शिक्षाएं हम सबको दी हैं, हम अवश्य ही उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः दादी जी का धन्यवाद। अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे दुर्गेश दीदी, भुवनेश्वर से आई हैं, खास दादी जी के लिए एक मिमेंटो लेकर के आई हैं जो उड़ीसा का यादगार है और उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो दादी जी को मिमेंटो प्रेजेंट करें। दुर्गेश दीदी भुवनेश्वर, साथ ही साथ मृत्युंजय भाई जी के लिए भी वो लेकर के आए हैं। आप ताली बजाएं, ताली बजा करके। बहुत प्यार से बहन जी ने दादी जी के लिए बनवाया था, एक मृत्युंजय भाई जी के लिए भी लाई हैं। दुर्गेश की दीदी, दुर्गेश दीदी जी मृत्युंजय भाई जी को उड़ीसा का यादगार ये मेमेंटो भेंट दे रही हैं। जोरदार तालियों से हम उनका उत्साह वर्धन करेंगे। उसके बाद हैदराबाद से हैदराबाद की लक्ष्मी बहन जी, आदि लक्ष्मी बहन जी दादी जी के लिए एक बहुत सुंदर कार्ड तैयार करके लाई हैं। वो भी अपने मन के भाव, हृदय के भाव प्रकट करना चाहती हैं और वो सभी स्पार्कलर्स की ओर से अंबिका दीदी जी दादी जी को वो कार्ड भेंट कर रही हैं। ये बहन की विशेषता है कि बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाती हैं, बहुत इनकी रुचि रहती है, तो वो अपने हाथ से बनाए हुए कार्ड्स लाई हैं जो मंच पर जो भी आसीन हमारे भाई बहने हैं सबको वो देंगे। ये पत्तों से भी बनाती हैं, पीपल के पत्ते, नेचुरल पत्तों से बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स और बहुत अच्छा बनाती है और बहुत ही इनोवेटिव इनके पास आइडियाज रहते हैं कार्ड्स के। आदि लक्ष्मी बहन जी हैदराबाद सबको अपने हाथ से बनाया हुआ हैंडमेड ब्लेसिंग कार्ड्स सबको दे रही हैं। अभी इसके बाद जलगांव लोकल चैप्टर की ओर से एक बुक तैयार किया गया है, शिव शक्ति कंबाइंड स्थिति। ये एक वर्षीय प्रोजेक्ट चला था और उसके ही आधार पर, जिसके बारे में राकेश भाई जी ने चर्चा भी की, अभी इसका विधिवत इसका विमोचन होगा दादी जी के हस्तों से। हम अनुरोध करते हैं अलका दीदी जी से, राकेश भाई जी से, मुकुल भाई जी से और इस बुक को बनाने वाली जो प्रतिभा बहन जी है, खास इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इस बुक को बनाने में, सबसे हम अनुरोध करते हैं कि आप आएं और इस बुक का विमोचन दादी जी से करवाएं। थोड़ा जल्दी करें, हमारे पास समय की कमी है, अभी काफी प्रोग्राम्स बाकी हैं, समय कम है आज। राकेश भाई जी आ जाएं, आप भी आगे आ जाएं। इस बुक का नाम है स्त्री शक्ति कंबाइंड स्थिति। ये पूरा एक अपने आप में एक टीम वर्क है, लेकिन इस बुक को बनाने में जो सबसे ज्यादा सहयोग है प्रतिभा बहन जी का है। इस बुक का विधिवत विमोचन आदरणीय दादी जी के हस्तों से हो रहा है। ओम शांति। अब आदरणीय दादी जी के बाद हम सुनना चाहेंगे हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को। तो अभी हम आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को सुनने जा रहे हैं। मृत्युंजय भाई जी को कौन नहीं जानता है, मैं समझता हूँ आपका परिचय देना, वैसे तो परिचय आपका इतना बड़ा है, लेकिन सार में मैं बताना चाहूंगा कि आप ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। आपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत सेवाएं की हैं, समाज को बहुत योगदान दिया है, और आपके इस योगदान को देखते हुए सरकार ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। बाबा के घर में जो भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े जो मीट होते हैं, समिट्स होते हैं, आप ही उसको लीड करते हैं। संचालन की एक बहुत ही कुशल कला आपके अंदर है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की एक बृहद कुशलता आपके अंदर है। तो ऐसे अनमोल रतन बाबा के घर में जो सेवाओं के एक स्तंभ हैं आज के समय में हमारे लिए, और शुरू से हम देखते आए हैं कि आपके द्वारा देश विदेश में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हुई हैं, आज आप हमारे बीच हैं, हमारे लिए ये भी एक बहुत गौरव का विषय है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने इंस्पिरेशंस हम सबको जरूर दें। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, हमारा आदरणीय अंबिका बहन जी, अलका बहन जी, श्रीकांत भाई, संजय भाई, छाया बहन, राकेश भाई, तनुजा बहन, सरोजा बहन, और भी अनीता बहन, और किसी की सभा में स्टेज पर है किसी का नाम मिस कर तो मुझे क्षमा कर देना। और दूसरा, दूर दूर से बैठे हुए हमारा स्पार्क विंग की उत्साही भाई बहने, और दूसरा इधर से भी सामने दृष्टि में नहीं दिखाई रहे थे, हॉल में टीवी के माध्यम द्वारा व स्क्रीन के माध्यम द्वारा देखने वाले, विशेष करके भाई बहनों के लिए जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। और आप सभी पीछे बैठे हुए, सामने बैठे हुए, नीचे कुर्सी के बिना बैठे हुए, इतने समय तक आपका भी साधना के लिए सलाम। क्योंकि और एक क्योंकि स्पार्क का यह भी साधना है, आज स्पार्क की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के रूप में आप सभी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली तो हम मनाएंगे नहीं है, परंतु गोल्डन जीवन तो जरूर बनाएंगे और गोल्डन सिल्वर जुबली में गोल्डन लाइफ जरूर मनाएंगे। आगे डायमंड जुबली मनाएंगे नहीं, परंतु डायमंड हम सभी बन करके बाबा को दर्शाएंगे, ऐसा है ना। इसके लिए ये ऑल इन वन और थ्री इन वन तो आइए है, इसके लिए ऐसी जुबली मनाने के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने से आए हुए और विशेष करके स्पार्क की दृष्टि से स्पार्कलिंग लाइट्स है। बाबा ने कहा था लाइट एंड माइट बतो एवरीथिंग विल बिकम राइट, जो आप सोचेंगे ना वो सब राइट हो जाएगा। इसके लिए ऐसा राइट करने वाले, इसका विषय आज का जो विषय है बाप समान बनने की जो पुरुषार्थ साक्षात्कार मूर्त, इसके लिए बाबा ने समय प्रति समय अनेक वरदान दिया, शिक्षा दिया, इशारा दिया और इस इशारे को अपने जीवन में धारण करने के लिए विशेष करके ब्राह्मण जीवन में ये उमंग उत्साह बरकराने के लिए स्पार्क एक बहुत बड़े विशेष अदा कर रहे है, रोल कर रहे है, सहयोग दे रहे है। सारी एक विंग के हिसाब से मैं देखता हूँ, सारी विंग के लिए एक सपोर्टिंग रिसर्च वर्क है। मैंने अभी भी देखा कुछ रिसर्च वर्क की हिंदुस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके कई प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया, ये हमारे लिए संस्था के लिए देश के लिए गौरव की बात है, इसके लिए जोर से ताली बजाए। और भी मैंने देखा लिस्ट में निमैंस है और बेंगलुरु में एक निमैंस है और साथ साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मुझे बहुत खुशी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैं कई बार गया हूँ और उसमें बहुत साल पहले जगदीश जी जब विदेश से वापस आए थे 1972 में विदेश से एक साल पर्यटन करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमारे दादी जगदीश जी का एक भाषण रखा था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के में, उधर टॉप साइंटिस्ट है हिंदुस्तान के टॉप साइंटिस्ट में बाबा डॉक्टर राजा रामन है, श्रीनिवास है और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन दिनों में भी वो साइंटिस्ट है। उन्होंने जगदीश जी के वक्तव्य को देख करके बहुत खुश हो गया, आकर के दादी जी याद आ रहे और जगदीश जी को बहुत सम्मान किया, अभिवादन किया, सत्कार किया। मुझे आज खुशी है उसी इंस्टीट्यूशन ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव है। इसके लिए आप सबको श्रीकांत भाई को अंबिका बहन को आप सबको बहुत बहुत बधाई बधाई। और इस समय में रमेश भाई का भी याद आ रहा है क्योंकि रमेश भाई के पुरुषार्थ अनुसार और उनका इच्छा उनका संकल्प शक्ति और स्पार्क होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन में, बहुत विंग बने थे और बाद में स्पार्क विंग बना क्योंकि इन सबकी विंग में तो अलग अलग रिसर्च हो रहा है, काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, एक मास अपील कर रहा है, परंतु एक खोर एक्सप्लोर होने के लिए और होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से उन्होंने संकल्प किया था। और इस समय में रमेश जी किसी भी रूप में आत्मा तो है ही है, अभी तो छोटा बच्चा बन करके सेवा कर रहे होंगे, परंतु उनका संकल्प इतने वाटर वृक्ष के रूप में विस्तार हो रहा है, इसके लिए उनको भी याद करते हुए उनको भी बधाई देते हैं। और इनसे जुड़े हुए सभी, मैं समझता हूँ किसी भी विंग में इतने भाई बहने जुड़े नहीं है, थोड़े थोड़े जुड़े हैं और सबसे ज्यादा स्पार्क है क्योंकि आप सब स्पार्किंग लाइट है। और दूसरा मैंने देखा स्पार्क मीटिंग तो देश के कोने कोने में चल रहा है और हर एक कोई न कोई पुरुषार्थ का एक सब्जेक्ट लेकर के पुरुषार्थ करते हैं, कराने वाले भी ऐसे करने वाले भी ऐसे। और दूसरा तो एक कोई डिसाइड करते है उसको एक सम्मेलन कर दिया, एक कैंपेन कर दिया, एक किताब बना दिया, कुछ अलग, परंतु इसमें हर व्यक्ति को मैं जोड़ करके सेवा कर रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ा विंग तो यही बन गया, इसके लिए जोर से ताली बजाओ। बाबा ने हम सबको एक तो बाप समान बनने के लिए बहुत साल से पुरुषार्थ करा रहे और साक्षात्कार मूर्त बनना, साक्षात्कार मूर्त बनाना अर्थात क्या है, माया प्रूफ बनाना, फीलिंग प्रूफ बनना, निर्विघ्न प्रूफ बनना और सदा प्रसन्न रहना। प्रभु संकल्प, प्रभु का आपका चेहरे पर, बाबा ने कहा था आपके चेहरे से बाबा दिखना चाहिए, आपके संकल्पों में बाबा का शक्ति मिलना चाहिए। बाबा ने कहा संकल्पों द्वारा शक्तियों का वरदान दो, वाणी द्वारा बाबा का शिक्षाओं का व वरदानों का वर्षा करो और अपना कर्म बाप समान दर्शाए गुणों का। इसके लिए जो गोल्डन जुबली भी, मैं सिल्वर जुबली से आगे चल करके गोल्डन जुबली, गोल्ड को कैसे भी करके मोल्ड कर सकते हैं, जीवन कई भी परिस्थिति में आपको मोल्ड कर सकता है, परिस्थिति के वश न होगा। इसकी गोल्ड की वैल्यू आप सभी जानते हैं, सत्युग से लेकर के यहाँ तक, सत्युग की गोल्ड का वैल्यू नहीं है, कलयुग में गोल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे मेटल में। और डायमंड सत्युग में आपके घर घर में डायमंड होगा, परंतु संगम युग में और इस कलयुग में डायमंड का क्या वैल्यू आप सभी जानते हैं। छोटी सी दखता है परंतु इसका वैल्यू इतना है। क्यों? इस कलयुग में अंधकार को मिटाने के लिए लाइट की चाहिए, डायमंड बन करके चाहिए, माया प्रूफ होना चाहिए, विघ्न प्रूफ होना चाहिए, हर प्रकार के प्रूफ का एक निशानी। इसके लिए बाबा कहते हैं कोहिनूर हीरा बनो, बेदाग हीरा बनो, बेदाग हीरा। दादी प्रकाश मणि जी को बाबा कहते थे ये कोहिनूर हीरा है, हीरा। दादी बन सकते तो हम भी बन सकते हैं, क्योंकि दादी का शिक्षक हमारा भी शिक्षक है, दादी का बाप हमारा भी बाप है, दादी का सदगुरु हमारा भी सदगुरु। बाबा दादी को भी साथ दिया, हम सब भी साथी दे रहे हैं। इसके लिए साथी बन करके जीवन बनाओ, साक्षी हो करके ड्रामा को देखो। ड्रामा का हर परिस्थिति चेंज हो रहा है, अभी तो 2020 है, 2020 का मैच में हिटर गेट आउट, दोनों एक काम है, हिटर गेट आउट। अर्थात अभी प्रत्यक्षता करना तो वर्ष भी आ गया, अभी तक बाबा ने रिवील किया सत्यता का रिवील किया, अभी जो होने वाला है क्या रेवोल्यूशन है, जो रिवील किया उसका रेवोल्यूशन है, उसका क्रांति है। केवल शांति की बात नहीं, शांति का क्रांति होगी, सद्भावना की क्रांति होगी, सुभावना की क्रांति होगी, सत्यता का क्रांति होगी, पवित्रता का क्रांति होगी। और इसको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, इस क्रांति का पुरुषों को, क्रांति का उगम को, क्रांति का महिमा को देखने के लिए व अनुभव करने के लिए किधर जाएंगे? बाबा कहना एक ही हट्टी है, वो तो आपके पास आएंगे, अपने घर में आएंगे, बाबा के घर में आएंगे। इसके लिए वो कार्य आप सभी कर रहे हैं जो बाबा का उम्मीद था, आशा थी, वरदान था। ऐसे उम्मीद और आशा और वरदानों को साकार करने वाले आप सबको मैं बहुत 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 शत शत प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ, नमस्ते करता हूँ, ओम शांति करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।
फोन मृत्युंजय भाई जी।